अगले दिन सुबह राजमहल में जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। पूरे महल के बाहर लोग अपने काम में लगे हुए थे और हॉल के अंदर भी काफी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। ये सब देखकर अर्पिता थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? अर्पिता हॉल में इतनी हलचल देखकर थोड़ी सी घबरा गई। तभी मासा अपने कमरे से बाहर निकली। उन्होंने जैसे ही हॉल में इतने सारे लोगों को देखा, उन्होंने अपनी भौहें से कोड़ ली। तभी पल्लवी ने घर के नौकरों को ऑर्डर देते हुए कहा, राजमहल का एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। पूरे राजमहल को फूलों और लाइट से दुल्हन की तरह सजा दो। किसी चीज में अगर कमी हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पल्लवी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मासा का दिमाग ठंडा हो गया। वो सीधे सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई और अपनी बड़ी सी आम चेयर पर आकर बैठ गईं। वो सबको इस तरह काम करते देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थीं और उन्होंने पल्लवी को घूरते हुए देखने लगीं। जैसे ही पल्लवी की नज़र मासा पर पड़ी, वो मुस्कुराने लगीं और उनके करीब आकर बोली, भाभी सा, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? हमने कुछ गलत किया क्या? मासा ने उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। उनके हाथ में चाय की प्याली थी और उन्होंने एक सिप चाय लिया। चाय को टेबल पर रखकर वो उठकर खड़ी हो गईं। तब तक नरेंद्र भी पल्लवी के बगल में आकर खड़ा हो गया। मासा ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्या है? किस चीज की तैयारी चल रही है? कोई हमें कुछ बताएगा? नरेंद्र ने मासा की बात सुनकर उन्हें घूरते हुए कहा, वैसे सच बताऊं भाभी सा, तो आपको कुछ जानने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो मैं बता देता हूँ। 2 दिन बाद मेरे बेटे की शादी है, बस उसी की तैयारी चल रही है। जैसे ही मासा ने ये बात सुनी, उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। पल्लवी उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। नरेंद्र एक कदम आगे बढ़कर मासा की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, लेकिन सच बताएं तो हमारा आपको कुछ भी बताने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन अब आप इतनी एक्साइटमेंट से पूछ रही हैं तो बता देते हैं। 2 दिनों बाद अभिनव की शादी है और उसके बाद अभिनव का राज्याभिषेक। अब तो आप कोई नई शर्त नहीं रख सकती ना? वैसे भी राजमहल का राजा बनने के लिए सबसे बड़ी शर्त तो यही थी ना, और हमने आपकी ये शर्त पूरी कर दी। मासा नरेंद्र और पल्लवी की तरफ अभी भी अचंभे से देख रही थीं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। मासा ने अपने मन में कहा, हमने तो पहले ही मुनीम जी से मना कर दिया था कि कोई भी लड़की अभिनव से शादी करने के लिए तैयार नहीं होनी चाहिए, तो फिर किस राजघराने के लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है जो वो अपनी बेटी की शादी अभिनव से करवाने के लिए तैयार हो गए हैं? उन्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। मासा ये सारी बातें अपने मन में बोल रही थी, तभी पल्लवी ने कहा, नरेंद्र, हमें तो ऐसा लग रहा है शायद भाभी सा को गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने तो ये सोच रखा था कि हमारे बेटे को कोई लड़की नहीं मिलेगी, लेकिन अब उन्हें अपने अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है ना भाभी सा? पल्लवी की ये बात सुनकर मासा ने अपने हाथ बढ़ाए और उन्होंने पल्लवी को घूरते हुए कहा, देखिए पल्लवी, हमें आपके इस डिसीजन से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम फिर भी जानना चाहते हैं कि किस राजघराने की बेटी हमारे राजमहल में बहू बनकर आ रही है, क्या हम ये जान सकते हैं? जैसे ही मासा ने ये बात पूछी, नरेंद्र और पल्लवी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पल्लवी कुछ बोलने जा ही रही थी कि नरेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से ना में सिर हिलाया और उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। पल्लवी भी नरेंद्र की बात सुनकर एकदम चुप हो गई। तभी नरेंद्र मासा को घूरते हुए देखकर बोला, क्यों, क्या करेंगी आप जानकर? और वैसे भी शादी करने की शर्त थी, ऐसी कोई भी शर्त नहीं रखी गई थी कि लड़की राजघराने की ही होनी चाहिए, इसलिए अब आप इस महल की कुर्सी को छोड़ने के लिए अपने मन को समझा लीजिए और याद रखिए, अब आप इस महल की राजमाता नहीं हैं। मासा नरेंद्र की ये बात सुनकर उसे घूरते हुए देखने लगी। तभी पल्लवी ने कहा, बस बहुत हो गया आपका हुक्म चलाना, अब आपकी जगह मैं लूंगी। इतना बोलकर पल्लवी और नरेंद्र वहां से चले गए। मासा ने सामने खड़े मुनीम जी की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मुनीम जी, पता करिए किस लड़की से अभिनव की शादी हो रही है। मुनीम जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और चुपचाप राजमहल से बाहर निकल गया। मासा वहीं अपने सिंहासन वाली कुर्सी पर बैठी रहीं और राजमहल की साज सजावट देखकर थोड़ी परेशान हो गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और सीधे अपने कमरे में चली गईं। अपने कमरे में पहुंचकर उन्होंने कहा, अगर नरेंद्र और पल्लवी इतने कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने सच में अभिनव के लिए कोई लड़की ढूंढ ली है, और अगर उसकी शादी हो गई तब तो फिर हम उसे राजा बनने से भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई बहाना ही नहीं होगा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। इतने सालों तक हमारे अभिमन्यु ने कुंवरसा की जिम्मेदारियां उठाई हैं और अब जब वो पूरी तरह से राजा बनने के लायक है तो कोई दूसरा उसकी जगह कैसे ले सकता है? मासा ने इतना सोचकर अभिमन्यु का नंबर डायल किया, लेकिन अभिमन्यु का नंबर अनरीचेबल जा रहा था। मासा ने पूरे दिन में कई बार अभिमन्यु का फोन ट्राई किया, लेकिन अभिमन्यु ने एक बार भी उनका कॉल पिकअप नहीं किया। तो मासा परेशान होते हुए बोली, पता नहीं कब आएंगे अभिमन्यु, हमें तो अब राजमहल की बहुत टेंशन हो रही है, हम अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकते, प्लीज अभिमन्यु जल्दी से वापस आ जाइए। मासा इतना बोलकर वहीं अपने बिस्तर पर बैठ गई। वहीं अर्पिता, जो मासा को इतना परेशान देख रही थी, उसने मासा के कमरे से बाहर आते हुए अपने मन में कहा,
मासा पहले ही इतनी ज्यादा परेशान है, अब अगर हमने उन्हें इसी बीच अपने डाइवोर्स की बात बताई तो वो शायद और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगी। अर्पिता इतना बोलकर अपने सर पर हाथ रखकर वहीं खड़ी हो गई। तभी अर्पिता को अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। किस बात को लेकर आप इतना परेशान हो रही हैं अर्पिता? जैसे ही अर्पिता ने वो आवाज सुनी वो तुरंत ही उसे पहचान गई। वो कोई और नहीं बल्कि समर्थ था। उसने समर्थ की तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं हम परेशान नहीं हो रहे। इतना बोलकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। समर्थ उसके पीछे पीछे आकर बोला, हम जानते हैं आप शादी की तैयारी को देखकर परेशान हो रही हैं, है ना? अर्पिता ने कहा, नहीं हम मासा की तबीयत को देखकर परेशान हो रहे हैं। भाई साहब भी मासा से बात नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ है वो, उनका फोन लग ही नहीं रहा। समर्थ ने अर्पिता की बात सुनकर उसके बगल में आकर खड़े होते हुए कहा, आप परेशान मत होइए, भगवान जी जैसा करेंगे अच्छा ही करेंगे। अर्पिता समर्थ की ये बात सुनकर अपनी आईज रोल करते हुए बोली, हाँ जैसे अभी तक तो भगवान जी ने हमारे साथ बड़ी अच्छी चीजें की हैं। इतना बोलकर अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए। समर्थ समझ गया कि वो अपने डाइवोर्स के बारे में सोच रही है। तभी समर्थ ने कहा, एक तरह से देखा जाए तो भगवान जी ने अच्छा ही किया है। ये बात अभी आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन हम 100% श्योर हैं कि आज नहीं तो कल आपको भी समझ में आ जाएगा कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। अर्पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है देखते हैं हम भी। इतना बोलकर अर्पिता मासा से मिलने जाने लगी। तभी समर्थ ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हैं आप, क्या हम आपसे थोड़ी देर बात नहीं कर सकते? अर्पिता ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं एक्चुअली हमारे सर में दर्द हो रहा है और हम सोने जा रहे हैं, वैसे भी काफी रात हो गई है। अगले दिन सुबह वहीं राजमहल के हॉल में मंडप तैयार किया गया था। उसे देखकर मासा का दिल बैठ जा रहा था। वो नहीं चाहती थी कि ये शादी हो।
उन्होंने अपने सर पर हाथ रखते हुए थोड़ा सोचकर कहा, हमें कैसे भी करके इस शादी को रुकवाना होगा, क्योंकि अगर एक बार ही शादी हो गई तो फिर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी ये बात बिल्कुल सच भी थी। मासा ने अपने कमरे में जाकर अभिमन्यु को फिर से कॉल किया। अभिमन्यु का नंबर डायल करते ही उसका फोन रिंग होने लगा। मासा ने कहा, प्लीज अभिमन्यु जल्दी से हमारा कॉल पिकअप करिए, हमें आपकी बहुत जरूरत है। अभिमन्यु ने मासा के फोन की तरफ देखा और कॉल पिकअप कर लिया। मासा ने जैसे ही अभिमन्यु की आवाज सुनी उन्होंने कहा, अभिमन्यु कहाँ है आप, आप प्लीज जल्दी वापस उदयपुर आ जाइए, हमें आपकी बहुत जरूरत है। अभिमन्यु ने मासा की बात सुनते हुए कहा, हाँ मासा हम उदयपुर पहुँच गए हैं, आप बिल्कुल परेशान मत हुई। मासा ने अभिमन्यु की बात सुनते हुए कहा, क्या सच में आप यहाँ आ गए हैं? अभिमन्यु ने कहा, हाँ बस थोड़ी देर में हम राजमहल पहुँच रहे हैं, आप परेशान मत हुई। मासा ने कहा, हम कैसे परेशान ना हो, आप जानते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? अभिमन्यु ने मासा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वहाँ क्या हो रहा है, और प्लीज आप हम पर भरोसा रखिए, करती है ना आप हम पर भरोसा? अभिमन्यु जैसे ही मासा की बात सुनी उन्होंने तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हम सिर्फ और सिर्फ आप पर ही भरोसा करते हैं और किसी पर भी नहीं। अभिमन्यु उनकी बात सुनकर बोला, तो फिर ठीक है, आप बिल्कुल भी खुद पर प्रेशर मत डालिए, हम बस थोड़ी देर में वहाँ आते हैं। वहीं अर्पिता हाल में चुपचाप खड़ी थी। उसने देखा कि मंडप में अभिनव आकर बैठ गया था। तभी पंडित जी ने कहा, दुल्हन को बुलाइए, शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा है। नरेंद्र ने पल्लवी की तरफ देखते हुए कहा, जाइए पल्लवी, कनिका को बुलाकर लाइए। पल्लवी ने किया और अदिति की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों भी हमारे साथ चलिए। जैसे ही पल्लवी ने उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहा वो लोग उसके पीछे पीछे जाने लगे।